नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री यूक्रेन की एक दिन की यात्रा पर आज कीव पहुंचेंगे। कहा, भारत इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका की चार दिन की यात्रा पर वाशिंगटन पहुंचे। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के साथ बैठक करेंगे। सरकार ने देश में सी प्लेन के परिचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। और नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के लुसाने में डायमंड लीग में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड की ऐतिहासिक यात्रा कल संपन्न हो गई। श्री मोदी ने इस दौरान वार्सा में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रे सेबेस्टियन डुडा के साथ बैठक की। श्री मोदी ने इस यात्रा को विशेष बताते हुए पोलैंड को भारत का एक अच्छा मित्र बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस यात्रा से एक मूल्यवान मित्र के साथ सहयोग बढ़ाने का अवसर मिला। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों में नई उपलब्धि हासिल की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चार दशकों बाद प्रधानमंत्री की ये उच्च स्तरीय यात्रा भारत और पोलैंड के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाएगी। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किसी भारतीय प्रधानमंत्री की दशकों बाद पोलैंड की यात्रा होने के कारण इसे भारत और पोलैंड के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री टस्क ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ पर श्री मोदी की मेजबानी करने को एक बड़ा सौभाग्य बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड पहल में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया।
हम चाहते हैं कि पोलैंड की कंपनियां भारत में बनवाए जा रहे मेगा फूड पार्क से जुड़े, भारत में तेज गति से हो रहे शहरीकरण से वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग के नए अवसर खुल रहे हैं। हम पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं।
प्रधानमंत्री और पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डुडा ने खाद्य प्रसंस्करण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे सहित कई क्षेत्रों में भारत और पोलैंड के बीच साझेदारी प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पोलैंड की राजधानी वार्सा में पोलैंड कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष मिखेल स्पिग्जो तथा फेडरेशन के एक अन्य सदस्य अन्ना कलब्रजिक से मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड में कबड्डी को अधिक लोकप्रिय बनाने तथा दोनों देशों के बीच और अधिक कबड्डी प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूक्रेन की यात्रा पर कीव पहुंचेंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। बातचीत मुख्य रूप से यूक्रेन संघर्ष का समाधान खोजने पर केंद्रित होने की संभावना है। यात्रा से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि युद्ध से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली के लिए हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। श्री मोदी ने कल वार्सा में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ बातचीत के बाद ये टिप्पणी की।
यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं।
वार्सा की यात्रा संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कड़ी सुरक्षा के बीच रेलगाड़ी से यूक्रेन की राजधानी कीव जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा होगी। श्री मोदी और श्री जेलेंस्की द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे, जिनमें आर्थिक और व्यापार, कृषि, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और शिक्षा, औषधि, रक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे विषय शामिल हैं। यह यात्रा यूक्रेन में चल रहे संघर्ष की पृष्ठभूमि में हो रही है और इस पर भी वार्ता वार्ता के दौरान चर्चा होगी। भारत ने समाधान तक पहुंचने के लिए लगातार कूटनीति और बातचीत की वकालत की है। श्री मोदी की यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और आगे ले जाने में मदद करेगी। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा संघर्ष समाप्त करने में योगदान देगी। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा के बारे में कहा कि इस यात्रा से यूक्रेन संघर्ष समाप्त होने की संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमरीका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के निमंत्रण पर संयुक्त राज्य अमरीका की 4 दिवसीय यात्रा पर कल शाम वाशिंगटन पहुंचे। यात्रा के दौरान श्री सिंह अपने अमरीकी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री सिंह अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री अमरीका के रक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ वर्तमान में चल रहे तथा भविष्य में होने वाले अन्य कार्यक्रमों पर भी एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय और गैर बाध्यकारी आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा का समझौता किया है। ये दोनों देशों को राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे से आवश्यक औद्योगिक संसाधन प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। पेंटागन ने कहा कि सौदे पर कल अमरीकी रक्षा विभाग के औद्योगिक आधार नीति के प्रधान उप सहायक रक्षा सचिव विक रामदास और भारत के रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव समीर कुमार ने हस्ताक्षर किये। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आरसीएस उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत सी प्लेन संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में सी प्लेन संचालन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई गई है और इनमें इससे जुड़े सभी तरह के हितधारकों के दायित्वों को रेखांकित किया गया है। श्री नायडू ने कहा कि दिशा निर्देशों का उद्देश्य देश के दूरदराज के क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ाना तथा सभी के लिए यात्रा को और अधिक सुलभ बनाना है।
Providing last mile connectivity to regions that have remained isolated due to geographical challenges. This new mode of transportation will not only offer faster and more comfortable travel to those areas, but also open up new avenues for economic growth, particularly in the tourism sector.
पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज देशभर में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के इस वर्ष का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, जो समाज और प्रौद्योगिकी पर अंतरिक्ष अन्वेषण के गहरे प्रभाव को रेखांकित करती है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू रोबोटिक्स चैलेंज और भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन के विजेताओं को सम्मानित करेंगी।
चंद्रयान 3 मिशन ने पिछले साल आज ही के दिन चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग पूरी की थी। इस उपलब्धि के साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर को सफलतापूर्वक उतारा गया और लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को लेकर 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन से पहले नई दिल्ली में कल क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार नए क्रिएटर इकोनॉमी को प्रोत्साहित करती है और इससे रोजगार सृजित हो रहा है।
हमें अब ये देखने की जरूरत है कि इस इकोनॉमी के लिए, क्रिएटर्स वर्ल्ड के लिए जो टैलेंट डेवलपमेंट या जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो कैसे डेवलप करें। हम लोग बहुत सीरियसली इस पे काम कर रहे हैं कि एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बने क्रिएटर्स के मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए, वैसा थिंकिंग अभी डेवलप हो रहा है।
और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के लुसाने में डायमंड लीग प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे। नीरज ने अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर तक भाला फेंका। पीटर्स एंडरसन 90.61 मीटर के साथ पहले नंबर पर रहे। जर्मनी के जूलियन बेबर 87.08 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। उधर भारतीय अंडर 20 फुटबॉल टीम आज नेपाल के काठमांडू में सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप के अंतिम ग्रुप मैच में मालदीव से खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद पौने 3 बजे शुरू होगा। भारत के एक मैच से 3 अंक हैं। मालदीव के खिलाफ ड्रॉ खेलकर भी भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। मालदीव अपने पहले मैच में भूटान से 1-2 से हार गया था। इधर खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग पश्चिम क्षेत्र कल से उत्तर प्रदेश के मेरठ में शुरू होगी। 4 दिन की ये लीग 27 अगस्त तक चलेगी। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात सहित पश्चिम क्षेत्र के विभिन्न राज्यों की महिला खिलाड़ी भाग लेंगी।
वहीं पंजाब में बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत प्री प्राइमरी स्तर के बच्चों का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
आरंभ पहल का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले छोटे बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। यह अभिभावकों व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी के साथ बच्चों के लिए पोषण और खेल आधारित सीखने का माहौल प्रदान करने के लिए तैयार है। कार्यक्रम का उद्देश्य आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से समग्र विकास को बढ़ावा देना है। आरंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए आधारभूत, आधारशिला और पोषण भी, पढ़ाई भी, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसी राष्ट्रीय पहलों के साथ संबंधित है। शिशु शर्मा शांतर, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून महीने में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत 21,67,000 नए कर्मचारियों ने नामांकन दर्ज किया है। ये पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 7% अधिक है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 10,58,000 कर्मचारी 25 वर्ष तक की आयु वर्ग से हैं। 4,32,000 महिला तथा 55 ट्रांसजेंडर सदस्यों ने भी योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्राची प्रिया।
धन्यवाद फरहत। यूक्रेन रवाना होने से पहले पोलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया संदेश, किसी भी समस्या का हल रणभूमि में नहीं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की अपील की खबर भी आज सब अखबारों के पत्रों पर पहले पन्ने पर है। राष्ट्र सहारा लिखता है, कोलकाता मामले में सुप्रीम कोर्ट हुआ और सख्त, केंद्र और राज्यों को दिए निर्देश, हफ्ते भर में चिकित्सा कर्मियों को दें फुल प्रूफ सुरक्षा। बराबर रहेगी आर्थिक विकास दर की गति, वित्त मंत्रालय ने मासिक समीक्षा में कहा, 6.5% से 7% की जीडीपी वृद्धि पर दर का अनुमान उचित, दैनिक जागरण की खबर है। गोविंद राजन पद्मनाभम विज्ञान रत्न से नवाजे गए, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए, देश के 33 वैज्ञानिकों को मिला राष्ट्रीय सम्मान। वहीं जनसत्ता ने मंकीपॉक्स पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ा मंकीपॉक्स संक्रमण का खतरा। अमर उजाला ने सर्दी और बुखार के जानलेवा होने की खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री यूक्रेन की एक दिन की यात्रा पर आज कीव पहुंचेंगे, कहा भारत इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमरीका की 4 दिन की यात्रा पर वॉशिंगटन पहुंचे। अमरीका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के साथ बैठक करेंगे। सरकार ने देश में सी प्लेन के परिचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। और नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड के लुसाने में डायमंड लीग में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।